प्रातः क्लास चल रहा था, 10/11/1966 गुरुवार को दूसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी जो गाते हैं शिव जयंती। शिव का प्रत्यक्षता रूपी जन अथवा जन्मभूमि, किसकी जन्मभूमि? कहेंगे परमपिता परमात्मा की जन्मभूमि। कौन है वो परमपिता परमात्मा शिव? परमपिता परमात्मा अर्थात दुनिया में जितने भी पिताएं हैं, और इस दुनिया की ही बात नहीं, तीनों लोक में जितने भी पिताएं हैं उनके बीच में परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं, धर्म पिताओं का भी पिता होता है, जिसे धर्म पिता है गॉड फादर के रूप में मानते आए हैं। परंतु वो धर्म पिताएं तो जानते ही नहीं हैं। कि वो सुप्रीम गॉड फादर कौन है, क्योंकि इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि भी धर्म पिताएं हैं और वो सब मनुष्य हैं। इस दुनिया में सभी मनुष्यों का एक बाप है, मनुष्यों ने कहा जाता है जो मननात मनुष्य कहे जाते हैं, मनन चिंतन मंथन करते हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले मन वाले 500-700 करोड़ मनुष्यों में एक बीज रूप बाप है, जिसे सब धर्मों में मान्यता प्राप्त है। आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, परंतु वो मनुष्यों का पिता है। जिसे प्रजापिता भी कहा जाता है, सारे मनुष्य मात्र में जो भी प्रजा है सभा का पिता, परंतु उस पिता का भी कोई पिता है। जिसे सुप्रीम गॉडफादर कहा जाता है, पिताओं में उसकी सुप्रीमेसी है। परंतु वो आत्माओं का पिता है, और आत्माएं सिर्फ मनुष्य में ही नहीं होती हैं, पशु पक्षी पतंगे कीट जो भी चलते फिरते बोलते हैं, उन सब में आत्माएं, उन सभी आत्माओं का वो एक पिता है। परंतु वो आत्माओं के बीच में जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, और आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। इसलिए पूर्व जन्मों की सारी बातें भूल जाती है। वो परमपिता आत्माओं का बाप जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण त्रिकालदर्शी है। परंतु है तो त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखने वाला है, लेकिन देखने के लिए उसके पास आंखें नहीं है, सुनने के लिए कान नहीं है, कर्म करने के लिए हाथ नहीं है, बोलने के लिए मुख नहीं है, वो तो सिर्फ अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, जिसके लिए गीता में कहा है अणु अणियान सम्मन स्मरित, अणु से भी अणु, और उस अणु रूप ज्योति बिंदु का नाम ही शिव है, जो उसकी आत्मा का नाम है, उसको शरीर नहीं है। बाकी सभी आत्माएं सबको अपना शरीर होता है, और नाम भी शरीर के ऊपर पड़ता है। नाम काम के आधार पर पड़ता है, शरीर और शरीर की इंद्रियों से ही काम किया जाता है। परंतु सुप्रीम सोल गॉड फादर को अपना शरीर ही नहीं है। तो काम के आधार पर नाम कैसे पड़ता है? वो तो निराकार है। निराकार बाप है और बाप है तो जरूर वर्षा देता होगा। वो बाप कैसे हो सकता जो वर्षा न दे? इनहेरिटेंस न दे, तो वो आत्माओं का बाप निराकार बाप निराकारी वर्षा देता है। किसको देता है? निराकारी आत्माओं का बाप है ना, तो किसको वर्षा देगा? है जो निराकार आत्मा बनेंगी जो नंबरवार देवहन को छोड़ेंगी उन आत्माओं को जो सुप्रीम सोल के बच्चे कहे जाते हैं आत्मा के बच्चे आत्मा ही होंगे ना। सांप के बच्चे सांप जैसे, चींटी के बच्चे चींटी जैसे, हाथी के बच्चे हाथी जैसे, और आत्मा के बच्चे आत्मा। मतलब इस मनुष्य सृष्टि में सभी आत्माएं देहधारी हैं, देह को धारण करने वाली है। जब तक देह का आधार छोड़ करके निराकारी ज्योति आत्मा न बने, तब तक सुप्रीम सोल बाप के बच्चे नहीं, क्योंकि मनुष्य के बच्चे मनुष्य है, जानवर के बच्चे जानवर है, और आत्मा के बच्चे आत्मा। परंतु आत्मा तो अजर हमें जवाब भी आशी है, आत्मा कोई पैदा तो होती नहीं है। जन्म मरण के चक्र में तो शरीर आता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा का ना जन्म होता है न मृत्यु होती है, इसलिए आत्मा तो अविनाशी है। परंतु जैसे गीता में कहा है, संगात संजायते कामा, संग करने से कामना उत्पन्न हो जाती है। इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इच्छा होती है देवान बालों को, इच्छा मात्रम अविद्या है तो देवान का नाम निशान नहीं रहेगा। इस सृष्टि में देह धारण करने वाली जो भी आत्माएं हैं, सबको सुख की इच्छा है, सृष्टि के आदि से ही पहले जन्म से ही जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं सुख भोगने की इच्छुक रही। कोई आत्माओं ने सृष्टि के आदि से ही ऊंचे से ऊंचा सुख भोगा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रियों के द्वारा सुख भोगा, श्रेष्ठ इंद्रियां है ही आंखें, ज्ञानेन्द्रियों में भी श्रेष्ठ, फिर श्रेष्ठ माने ऊंची, आंखें हैं ही सबसे ऊंची, फिर नंबर वार दूसरी वो दूसरे इंद्रियां आती हैं, और उनके सुख भी नंबर वार अविनाशी हैं, अल्पकालिक हैं। जिन इंद्रियों का सुख यानी श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियों में आंखों का सुख दीर्घ काल का है, और ज्ञानेन्द्रियों के मुकाबले जो ज्ञानेन्द्रियां भी नंबर वार हैं उनके मुकाबले भ्रष्ट इंद्रियों का सुख
अल्पकालिक है।
सृष्टि की आदि से लेकर के सतयुग आदि से लेकर के त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों में जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं धीरे धीरे नीचे उतरती जाती है और अल्पकालिक सुख भोगती जाती है। इसलिए कलयुग अंत में जो कर्मेंद्रियों का सुख है यानी व्यस्त इंद्रियों का सुख है वो क्षण भंगुर कहा जाता है। आत्माएं सुख दुख के चक्र में आती है तो जन्म मरण के भी चक्र में आती है, परंतु आत्माओं का बाप सुख और दुख के चक्र में नहीं आता तो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको अपना शरीर है ही नहीं, श्रेष्ठ इंद्रियां भी नहीं है और भ्रष्ट इंद्रियां भी नहीं है। सदा इंद्रियों से परे है, तो जो है ही इंद्रियों से परे वो अपने बच्चों को कैसा सुख देगा? है इंद्रियातीत तो सुखी ही देगा ना, इंद्रियों से परे का सुख ही देगा ना। इसलिए वो जब इस सृष्टि में आता है और आकर के अपने बच्चों जो नंबरवार आत्माएं बनती हैं, क्योंकि कोई बच्चे बड़े कोई बच्चे छोटे, कोई पहले आत्मा बनते कोई बाद में आत्मा बनते, तो दुनिया में परंपरा रही है कि बाप अपने बड़े बच्चे को क्या देता है? वर्षा देता है, इनहेरिटेंस देता है। तो सुप्रीम सोल बाप, सुप्रीम गॉड फादर अपने बच्चों को कौन सा वर्षा देता है? ब्रष्ट इंद्रियों के सुख का बरसा देता है, श्रेष्ठ इंद्रियों के सुख का बरसा देता है, ज्ञान इंद्रियों के सुख का बरसा देता है, नहीं फिर कौन सा बरसा देता है? है इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत परे का सुख देता है। जो गायन है शास्त्रों में, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो, जिन गोप गोपियों ने वो गुप्त पुरुषार्थ किया है। गोप गोपी का अर्थ ही है गुप्त। मेल है तो गोप, फीमेल है तो गोपी। क्या गुप्त पुरुषार्थ है? जो गुप्त पुरुषार्थ कोई को देखने में नहीं आता है, इसलिए गुप्त। बताओ क्या गुप्त पुरुषार्थ है? है? गुप्त पुरुषार्थ है अपन को ज्योति बिंदु स्टार आत्मा समझना। इस पुरुषार्थ को कोई देख सकता है? कौन कितना पुरुषार्थ करता है? नहीं देख सकता ना, इसलिए गुप्त है। और सिर्फ आत्मा समझने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि आत्मा समझना अपन को आत्मिक ज्योति बिंदु रूप में देखना, ये तो उन्हीं आत्माओं का नंबर वार काम है। जिन्होंने आत्मा के बाप से जन्म लिया, कोई कोई आत्मा जन्म लेती है क्या? आत्माओं का बाप है तो बाप जन्म भी तो देता है। पहले जन्म देता है, बाद में इनहेरिटेंस देता है, वर्षा देता है। ये दो काम तो बाप के मुख्य है ना। कौन कौन से काम? जन्म देना और वर्षा देना। तो कैसे जन्म देता है? दिव्य जन्म क्या होता है? हाँ, जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, इस सृष्टि में आने के आदि से ही देह के बंधन में आई हैं। इसलिए देह का संग किया है। क्या? देह और देह की इंद्रियों का संग किया है। देह का सुख भोग है, देह की इंद्रियों का सुख भोग है। संग से ही सुख भोगा ना। तो देह से अटैचमेंट लग जाता है, लगाव लग जाता है। और जब लगाव लग जाता है तो जिससे लगाव लग जाता है वो अपना लगता है या पराया लगता है? जिससे अटैचमेंट हो जाता है उसमें अपनापन आ जाता है या परायापन आता है? अपनापन आ जाता है। तो देह में लगाव लगने से, देह की इंद्रियों में लगाव लगने से जन्म जन्मांतर इंद्रियों का सुख भोगते भोगते ऐसा अटैचमेंट लग जाता है कि जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं अपन को देह समझ बैठती है। और अपन को जो हम स्वयं हैं उस स्वरूप को भूल जाती है। जिसे अटैचमेंट लग जाता है, जिसे लगाव लग जाता है, जिसका लगाव लग जाता है वो अपने सुख को देखता है या जिससे लगाव लग जाता है उसके प्रति ज्यादा सोचता है? है, जिससे लगाव लग जाता है उसके प्रति ज्यादा सोचता है। तो देह से लगाव लग गया तो आत्मा अपन को भूल गई और देह के बारे में चारों तरफ, देह के बारे में, देह के पदार्थों के बारे में, देह के संबंध के बारे में, देह के जीवन में जितने संपर्क में आए हैं उनके बारे में सोच विचार चलता है। अपने स्वरूप को आत्मा बिल्कुल भूल जाती है। जो आत्माएं, कोई भी आत्माएं हो जन्म मरण के चक्र में आने वाली, जब भी आत्मलोक से उतरती है इस सृष्टि पर तो पहले पहले अपनों को ज्योति बिंदु आत्मा ही समझती है, चाहे वो देव आत्माएं हो और चाहे वो धर्म पिताएं हो और चाहे वो धर्म पिताओं के फॉलोअर्स आत्माएं हो, कम से कम पहले जन्म में शुरुआत में कम से कम अपन को क्या समझेंगी? आत्मा समझेंगे। परंतु देह में आ गई ना, देह का संग हुआ ना, पहले जन्म में ही देह का संग होता है, देह की इंद्रियों का सुख लेती है, तो लगाव शुरू हो जाता है। अटैचमेंट शुरू हो जाता है। पहला पहला अटैचमेंट किससे होता है? है, शरीर से। और शरीर काय से बना है? पांच तत्वों से पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश तो ये पांच तत्वों से बने इस शरीर से आत्माओं का लगाव लगता है तो आत्माएं अपने स्वरूप को सर्वथा भूल जाती है। देव आत्माएं जिन्हें दिव्य आत्मा कहा जाता है दिव्य जन्म लेने वाले बाप के बच्चे हैं वो जल्दी नहीं भूलते आत्मा के स्वरूप को। आधा कल्प तक उनको अपने आत्मा के स्वरूप की स्मृति रहती है। क्योंकि जो देवता धर्म की आत्माएं हैं वो देवता धर्म किसने स्थापन किया?
सनत कुमार
इस्लाम बौद्धि क्रिश्चियन आदि धर्म देहधारी धर्म पिताओं ने स्थापन किया। जो एक जन्म के लिए वो भी कोई जरूरी नहीं सारा ही एक जन्म क्योंकि शुरुआत में आत्म की स्मृति रहती है और उसी जन्म में अंत समय में देवान में आ जाते। तो उन धर्म पिताओं की तो ज्यादा से ज्यादा कहें एक जन्म की आत्मिक स्मृति और बाकी देवा तो उनकी जो रचना है उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी देवान वाले ही ज्यादा होंगे कि आत्माभिमानी होंगे? देह अभिमानी बहुत बन जाते हैं क्योंकि उनका बाप ही देवानी है और देवात्मा मनुष्य को देवता कौन बनाता है? धर्म पिता है। मनुष्य को देवता बनाता है वो जो कभी भी देवान में नहीं आता। परंतु स्वयं नहीं बनाता है? स्वयं बनाता या किसी को निमित्त बनाता? किसको निमित्त बनाता? है, जैसे दुनिया में जितने बाप हुए सभी बापों ने अपने बड़े बच्चे को प्रॉपर्टी का निमित्त बनाया, तो सुप्रीम सोल गॉड फादर भी इस सच्चे रूपी रंगमंच में जो भी प्राणी मात्र हैं प्राण धारण करने वाली आत्माएं उनमें जो श्रेष्ठ मनुष्य है उन मनुष्यों के पिता को चुनता है। मनुष्य आत्माओं के बीज को चुनता है। क्या करने के लिए है? देवता तो बाद में बनाएगा, वो बनाता भी नहीं है देवता, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर इंजीनियर बनाता है, वकील वकील बनाता है, बनाने वाला खुद होगा तो दूसरों को बनाएगा है?
बना होगा तब बनाएगा।
बाप धनवान नहीं होगा, अपने बच्चे को धनवान बनाएगा। बाप जमीन जायदाद वाला होगा, जमींदार होगा तो अपने बच्चों को भी जमींदार बनाएगा। और जो आत्माओं का बाप है वो स्वयं देवता है। अगर देवता है तो देवताओं के गुण भी होना चाहिए। देवताओं के गुण तो सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, और वो देवताओं को देवता बनाने वाला नहीं है, लेकिन वो तो भगवान है। क्या है? भगवान। डॉक्टर डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर इंजीनियर बनाएगा तो भगवान क्या बनाएगा? है भगवान भगवती बनाएगा कि देवी देवता बनाएगा? भगवान भगवती बनाता है। और भगवान भगवती किसको बनाता है? है बड़े बच्चे को भगवान बनाता है। वास्तव में भगवान एक होता है या भगवान दो चार होते हैं, अनेक होते हैं? है एक होता है, तो भगवान के साथ भगवती कहां घुस पड़ी? है भगवान तो हमेशा नंबर वन है कि नंबर दो भी है? वो तो नंबर वन है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह माने ऊंचे थे ऊंचा, हम भी कहते हैं ऊंचे थे ऊंचा भगवंत। तो जो ऊंचे थे ऊंचा भगवंत है वो ऊंचे थे ऊंचा ही बनाएगा, और ऊंचे थे ऊंचा एक होगा या अनेक होंगे? एक ही होगा। तो जो भगवान के साथ भगवती है वो भगवती भगवान से पहले है या भगवान के बाद है? बाद है माना रचना है ना। भगवान क्या हुआ? रचयिता हुआ। बल भगवान भगवती कहा जाता है परंतु भगवान तो एक ही होता है, गॉड इज वन। अनेक भगवान नहीं हो सकते या दो नहीं हो सकते। और गॉड इज वन क्यों कहा जाता? क्योंकि 100% सत्य कौन होगा? है 100% सत्य कौन होगा? एक भगवान ही तो होगा। कोई कहे क्यों होगा? क्योंकि वो भगवान कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए तीनों कालों की सच्चाई को सत्य को जानता है और सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान माने जानकारी, झूठ की जानकारी नहीं होती है, सत्य की जानकारी। तो सुप्रीम सोल तो सत्य है ही क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, लेकिन इस सब मनुष्य सृष्टि में जब आता है तो जिसमें प्रवेश करता है, जिसको अव्वल नंबर में चुनता है, इस सृष्टि का अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म, अव्वल नंबर का धर्म स्थापन करने के लिए धर्म पिता बनाता है, वो धर्म पिता सुप्रीम सोल बाप का एक ही बच्चा है। जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 84 के चक्र में जब आता है तो आदि से लेकर के अंतिम जन्म तक बाप को फॉलो करता है। कौन बाप है? शिव बाप, गॉड इज ट्रुथ बाप, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, सत्य को फॉलो करता है। और द्वैतवादी द्वापर युग से जब से ये द्वैतवाद फैलाने वाले धर्म पिताएं आत्मलोक से आते हैं तो इस सृष्टि में द्वैतवाद फैला देते हैं। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो मतें, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, मत मतांतर दुनिया में बढ़ता ही जाता है। नहीं तो इन धर्म पिताओं की हिस्ट्री उठा के देख लो, 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्य के पास है प्रूफ और प्रमाण सहित। उसे हिस्ट्री में मनुष्यों में मत मतांतर बढ़ा है या घटा है? है बढ़ा है। तो द्वैतवाद माना अनेक प्रकार के वाइब्रेशन फैलते हैं दुनिया में, मनुष्य मनुष्य की दृष्टि में भेद होता है, वाचा में भी भेद हो जाता है। ये भेदभाव की दुनिया बन जाती है। उस भेदभाव की दुनिया में बाप ने आकर के, सुप्रीम बाप, सुप्रीम सोल ने आकर के जो एकता स्थापन की थी या नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, परिवार है। परिवार कब होता है? प्रैक्टिकल में एक बाप होगा तो परिवार होगा, या दो दो चार चार बाप होंगे तो परिवार होगा? एक बाप। तो ऐसी सृष्टि आकर के परमपिता शिव स्थापन करते हैं, किसके द्वारा? परमपिता शब्द के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, परमपिता परमात्मा। ऐसे कभी नहीं कहेंगे परमात्मा परमपिता। जैसे शंकर शिव कभी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव शंकर। पहला नाम बाप का, बाद का नाम फॉलोअर का, बच्चे का। तो परमपिता जिसका कोई पिता नहीं, उसके साथ वो तो परमपिता एक आत्मा है तुरिया, उसके समान और कोई है ही नहीं। लेकिन जो और आत्माएं हैं जन्म मरण के चक्र में आने वाली, उनमें भी एक आत्मा है। जो इस सृष्टि पर एक ही है, जिसे हीरो पार्टधारी कहा जाता है, ड्रामा में नाटक में हीरो एक होता है या दो चार? दो चार होंगे तो विलियन होंगे। रावण संप्रदाय होंगे, शैतानों का संप्रदाय होगा, लेकिन हीरो एक ही होता है। वो हीरो वो भी आत्मा है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है, लेकिन जब सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं उस जन्म में वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है। क्या था एक ही आत्मा है जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच, जो जब से सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आता है तब से लेकर कभी भी जन्म मरण के चक्र में उस युग में नहीं आती है। ये क्या बात हुई? इसका क्या मतलब है? बाप पर निश्चय है माने बाप का बच्चा है, साबित होता है कि बाप से जन्म लिया है, और बाप पर निश्चय नहीं तो साबित होता है बाप का बच्चा नहीं है। निश्चय है तो बाप का बच्चा जन्म लेने वाला, और बाप के ऊपर अनिश्चय आया तो मृत्यु हो गई, बाप का बच्चा मर गया। माना जन्म मरण के चक्र में जो आने वाली आत्माएं हैं आज बाप को पहचानती है और कल संशय आ जाता है। संशय आत्मा विनश्यते। तो मृत्यु हो जाती है तो उन आत्माओं को क्या कहेंगे उस समय, उस युग में, उस जन्म में, जब सुप्रीम सोल बाप शिव इस सृष्टि पर आते हैं और उस बाप को पहचानती है फिर भूलती है, फिर पहचानती है फिर भूलती है, तो उन आत्माओं के लिए क्या कहेंगे? जन्म मरण के चक्र में आने वाली या जन्म मरण के चक्र से न्यारी हो गई आने वाली, और एक आत्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारी हो गई, जो शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा ने तीन बार सृष्टि रची और तीनों बार पसंद नहीं आई बिगाड़ दी। शास्त्रों में जो बातें हैं वो कहां की यादगार है? संगम की यादगार है। संगम में सन 36-37 में सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आया, और जिस मुकर्रर रथ में आया वो मुकर्रर रथ बयालीस में खलास हो गया। क्या खलास हो गया? मुरली बोला है लाश भी गुम कर दी, तो जब बाप ही नहीं रहा तो परिवार में विघटन होगा या नहीं होगा? है, विघटन होता है। फिर दोबारा सृष्टि रची। सन 47 में ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की रचना हुई। पहले क्या नाम था? अवमंडली। ब्राह्मणों की सृष्टि का नाम था अवमंडली। फिर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा कार्य शुरू हुआ। सन 47 से लेकर के 18 जनवरी 1969 तक ब्रह्मा जीवित रहे। उसके बाद उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। जो रचयिता था, बाप था ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, वो ही चला गया, तो परिवार का क्या हाल होगा? है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? इसलिए मुरली में बोला है, द्वापर युग जब आता है तो मनुष्य आपस में ही लड़ पड़ते हैं, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर देते हैं। क्या इब्राहिम आया, अरब देश अलग कर दिया, बुद्ध आया, चीन जापान देश, बौद्ध धर्मखंड अलग हो गया। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारियों में हुआ। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और जोनल इंचार्ज बना दिए, अपना अपना जोन लेकर के बैठ गए। तो द्वैतवाद शुरू हुआ कि नहीं हुआ? पहले सारे ब्राह्मण परिवार का संचालन एक माउंट आबू से होता था ब्रह्मा द्वारा। तो विघटन हुआ कि नहीं? और ये विघटन की परंपरा तब तक चलती रही जब तक परमपिता परमात्मा शिव का बोला हुआ वाक्य सच्चा साबित नहीं हुआ। क्या वाक्य बोला था? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ तब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। 66 में बोला, उस हिसाब से 76 आता है। और 76 साल के लिए ही लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे घोषणा दी गई है कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। कौन सी दुनिया की विनाश की बात थी? है हाँ, जो शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा ने तीन बार सृष्टि रची और तीनों बार पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। पहली बार रची सन 36-37 में, दूसरी बार रची 47 में और तीसरी बार रची 76 में। और 76 में जो सृष्टि रची, जिसके लिए बोला लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, तो लक्ष्मी नारायण तो सत्ययुग के आदि के बताए जाते हैं ना, 16 कला संपूर्ण है ना, वो 16 कला संपूर्ण नारायण जन्म लेंगे सृष्टि में, तो जब तक वो कलाहीन न हो जाए तब तक सृष्टि चलेगी या नहीं चलेगी? है? नहीं चलेगी? चलेगी, उनको भी तमो प्रदान होना है। तो बताया लक्ष्मी नारायण तो बाप के बच्चे हैं, नहीं है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने वाला कौन है? जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने वाला है वो बाप। उन बच्चों को पहले से ही बता देता है लक्ष्मी नारायण और यथा राजा तथा लक्ष्मी नारायण होंगे तो उनकी प्रजा भी तो कोई होगी कि नहीं? नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण विजयमाला के मणके बनेंगे तो उनकी प्रजा भी विजयमाला का मणका बनेगी ना, तो उनको तुम बच्चे बोला। तुम बच्चे, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 76 से 40 वर्ष जोड़ दिए, कौन सा सन आया है? 2016। और 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बताया था, कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? आत्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष या मनुष्य आत्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? मनुष्य आत्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बताया था। मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान और सतो प्रधान बनती है, तो बता दिया 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। और ये भी बता दिया कि 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो है लेकिन संपूर्णता वर्ष नहीं है। संपूर्णता वर्ष कौन सा? 77। तो 77 से 40 वर्ष जोड़िए, 2017 40 वर्ष पूरे होते हैं और वो बच्चे, कौन से बच्चे? जिन बच्चों के ऊपर बाप का दिल होता है। बाप का दिल कौन से बच्चे के ऊपर होता है? बड़े बच्चे पर। तो जो नर से नारायण बनने वाली आत्मा है, राम वाली आत्मा कहो, मनुष्य सृष्टि का बीज और उसकी सहयोगिनी शक्ति, दोनों आत्माएं, उनको कितना टाइम लगता है? 40 वर्ष। तो बताया कि ये सृष्टि का तीसरी बार निर्माण की बात है या चौथी बार है? तीसरी बार निर्माण हुआ या चौथी बार है? चौथी बार हुआ, 76 में। 76 की तो बात है,
76 में तीसरा,
तीसरी बार निर्माण हुआ। तो शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची और 3 बार बिगाड़ दी। सृष्टि रची, सृष्टि बिगाड़ दी, तो जो मनुष्य सृष्टि है उस सृष्टि का जन्मदाता भी बिगाड़ दिया क्या? मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो बीज को भी बिगाड़ा जा सकता है क्या? बीज तो अविनाशी है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ना, झाड़ में पत्ते विनाशी है, तना विनाशी है, टहनिया विनाशी है, फल विनाशी है, फूल विनाशी है, फिर क्या अविनाशी है? बीज अविनाशी है। सन 36 में भी नई सृष्टि ब्राह्मणों की रची गई, उस समय भी वो बीज निश्चय बुद्धि रहा। और सन 47 में दूसरी बार जो सृष्टि रची गई उसमें भी वो बीज, जब झाड़ संपन्न होता है, बड़ा हो जाता है, तो संपूर्ण झाड़ में से कौन सा भाग होता है जो अपने को पूरे वृक्ष से डिटैच कर देता है? झाड़ का फल पकता है, फल के अंदर बीज डिटैच हो जाता है। पहला फल ही तो गायन में गायन की बात है ना, पहला फल पका और बीज उसमें से डिटैच हो गया। इसलिए कोई भी किसान से पूछना, बागवान से पूछना कि कोई भी वृक्ष का पहले फल का जो बीज होता है उसे बोना वो सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। क्या पावरफुल होता है? तो चक्कर में भी वही बीज है, तीसरी बार चक्कर में सृष्टि रची गई ब्राह्मणों की। भले 2017 में सारे ब्राह्मण सृष्टि एक तरफ हो जाए और वो बीज रूप बाप अकेला रह जाए, डिटैच हो जाए, उस बीज का विनाश नहीं होगा और सारे झाड़ का विनाश हो जाता है। बीज रहेगा तो वृक्ष फिर पैदा हो जाएगा। वीर्य रहेगा और वृक्ष विनाश हो जाएगा, पुराना वृक्ष। क्या 76 में ऐसा हुआ था? 76 में ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया विनाश हुई? नई दुनिया की शुरुआत हुई ब्राह्मणों की? हाँ? हुई या नहीं हुई? हाँ? हुई। कोई कहे विनाश कैसे हो गई? वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दुनिया विनाश हो गई कि अभी भी चल रही है? अब ठर्रे से चल रही है, धड़ाके से चल रही है, विनाश हो गई है?
जो लक्ष्मी नारायण के लिए नहीं थी।
आप मुए मर गई दुनिया, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। क्या बिना समाज के मनुष्य जिंदा नहीं रह पाता? बड़े सन्यासी जंगल में चले जाते हैं, फिर भी वो आखिरीन जब तबों प्रधान बनते हैं तो समाज के अंदर घुस पड़ते हैं कि नहीं? ये समाज की लोक लाज परंपराएं मनुष्य जाति को अपने में बांध के रखती हैं। क्या परिवार में, हमारा सामान्य परिवार होता है ना, उसमें कौन सा ऐसा संबंधी होता है जिससे परिवार के सभी भातियों को बड़ा प्यार आता है? है कौन? माँ। ऐसे ही भगवान जो आता है और ब्राह्मण षष्ठी रचता है, उस ब्राह्मण षष्ठी में भी माँ बच्चों के मोह को नहीं छोड़ पाती और बच्चे माँ को नहीं छोड़ पाते। अगर यदा कदा माँ छोड़ करके अलग भागना भी चाहे तो बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, उसे स्वतंत्र नहीं होने देंगे। ऐसे ही सन 36 में ब्राह्मणों की षष्ठी रची गई, बयालीस से 47 के बीच विघटन हुई, बिगाड़ दी गई। तो भी उस ब्राह्मणों की षष्ठी को किसने अपनी मुट्ठी में ले लिया है? 47 में किसने मुट्ठी में ले लिया? ब्रह्मा माने क्या? बड़ी अम्मा ने अपनी मुट्ठी भी ले लिया, ले लिया ना। इसी तरह 47 में नई सृष्टि रची गई ब्रह्मा द्वारा और 76 में बिगड़ गई। एक के लिए बिगड़ गई या सब के लिए बिगड़ गई? आप मुए मर गई दुनिया एक की बात है या सब के लिए है? एक किसके लिए है? बाप, मनुष्य सृष्टि के बाप के लिए। पहले भी सन 42 में एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ, ऐसे ही सन 76 में भी एक आत्मा एक तरफ हो गई। कौन? बाप के मां, बाप अलग हो गया और मां ने ब्राह्मणों की सृष्टि को छोड़ दिया क्या है? ब्रह्मा ने भी नहीं छोड़ा, दादा लेखराज जिन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, बल शरीर छोड़ दिया लेकिन ब्राह्मणों को, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को नहीं छोड़ा। चलो वो तो अव्यक्त शरीर की बात है, सूक्ष्म शरीर की बात है। क्षेत्र में बाबा की वाणी के अनुसार एक का जन्म हुआ नई सृष्टि में या दो का जन्म हुआ? दो का जन्म हुआ। एक ने पुरानी ब्राह्मण सृष्टि को लात मार दी। किसने? पुराने पुराने कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे होंगे, वो जानते होंगे कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में पहले गेट पर बड़ा बोर्ड लगाया जाता था, उसमें कृष्ण का चित्र छपा होता था, हाथ में तीरी पर बहिष्ट दिखाई गई स्वर्ग और लात में नरक को लात मार रहा है। 76 के बाद वो चित्र गायब हो गए क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ने उसका रहस्य समझा ही नहीं। माने लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा तो संगमयुगी कृष्ण का जन्म होगा या नहीं होगा? है तो संगमयुगी कृष्ण जो है वो नई दुनिया का संगठन, ब्राह्मण सो देवता बनने वालों का संगठन हथेली पर दिखाई पड़ता है। नई दुनिया का नक्शा बुद्ध रूपी हथेली पर दिखाई पड़ता है और पुराना ब्राह्मणों का संगठन जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं उनको लात मार देता है। ये तो वही बाप की बात। नारायण वाली आत्मा की बात, फिर नारायण वाली आत्मा के साथ और दूसरी आत्मा कौन बताई? नारायणी, लक्ष्मी। लक्ष्मी कहाँ जाती है? वो तो सृष्टि की माता है ना। अरे माता है या नहीं है, वो कहाँ जाती है? वो नारायण के साथ जाती है, जन्म लेती है, या पुरानी जो ब्राह्मणों की दुनिया है उसके साथ रहती है? है हाँ, माँ नहीं छोड़ती। माँ बच्चों को नहीं छोड़ती और बच्चे माँ को नहीं छोड़ते। अभी भी वो माता कहाँ है जो जगत जननी कही जाती है? पुराने ब्राह्मणों की दुनिया के साथ बाप डिटैच हो जाता है। फिर सवाल ये है कि जन्म लक्ष्मी नारायण दोनों का हुआ या नारायण का हुआ अकेले का है? तो जब दोनों का जन्म हुआ तो वो अलग क्यों और वो अलग क्यों है? है नहीं, क्योंकि माँ होती है भावनावादी और बाप होता है बुद्धिवादी। क्या माँ होती है? भावनावादी। जो भावनावादी आत्माएं होती हैं वो ज्यादा पवित्र होती हैं या बुद्धिवादी आत्मा ज्यादा पवित्र होती है? जो भावनावादी होती हैं, पवित्र आत्माएं होती हैं, उनको साक्षात्कार होते हैं बंद आंखों के, या बुद्धिवादियों को साक्षात्कार होते हैं? तो वो माँ भावनावादी होने के कारण, भगवान बाप, आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल गॉड फादर, जो कहते हैं कि साक्षात्कार की चाबी मैं अपने पास रखता हूं, किसी को देता नहीं। किसको साक्षात्कार कराता है? बुद्धिवादियों को साक्षात्कार कराता है या भावनावादियों को साक्षात्कार कराता है? तो वो सृष्टि की माँ जो लक्ष्मी कही जाती है, महागौरी कही जाती है, वो साक्षात्कार के आधार पर टिकी रहती है। और नारायण वाली आत्मा बीज रूप है, ठोस रुद्रमाला का मणका है। बुद्धिवादी है इसलिए उसे साक्षात्कार की दरकार नहीं है। बुद्धि का काम है मनन, चिंतन, मंथन, समझना और समझाना। समझ को बुद्धि कहा जाता है। तो बुद्धि के आधार पर, ज्ञान के आधार पर साक्षात्कार करती है। भावना के आधार पर साक्षात्कार की दरकार नहीं है। और स्वप्न और साक्षात्कार पर विश्वास भी नहीं करती। तो जो माँ है वो बच्चों का पक्ष लेती है या बाप का पक्ष लेती है? है बच्चों का पक्ष लेती है और बच्चे भी माँ को छोड़ते नहीं है। छोड़ते हैं?
नहीं
छोड़ते। क्यों? क्योंकि बच्चे जानते हैं जो बाप है वो सारी प्रॉपर्टी तो बड़े बच्चे को दे देता है। हा? किसको देता है? बड़े बच्चे को। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बाप से तो कुछ मिलता नहीं, छोटे बच्चों को माँ का प्यार तो मिलता है कि नहीं मिलता है? उस प्यार के आधार पर, अनुभव के आधार पर वो माँ को नहीं छोड़ सकते और माँ बच्चों को नहीं छोड़ सकती। यज्ञ के आदि में सन 47 में भी ऐसे ही हुआ था, भले वो दाढ़ी मूछ वाली माँ थी लेकिन काम तो माँ का था ना, सहनशीलता तो थी माँ की जैसी। तो यहाँ भी माँ विनाशी दुनिया के विनाशी बच्चों के साथ और बीज बाप डिटैच हो जाता, फिर अव्यक्त वाणी में बोला बाप भी अकेला नहीं है, अकेला है, रुद्रमाला है साथ में नहीं है, है? तो एक एक करके वो इकट्ठे होते रहते, उस रुद्रमाला में भी कोई मूल रूप में माँ है या नहीं है? कौन है?
योगिनी माँ
है, मूल माँ। आप योगिनी माँ से पैदा हुए थे या जगदम्बा से पैदा हुए थे? तो जो मूल माता है रुद्रमाला में, एडवांस पार्टी जिसे कहा जाता है, वो जगदम्बा है तो लास्ट मण का, रुद्रमाला का, लेकिन लास्ट मण का होते हुए भी फर्स्ट मण के और दोनों ही मण के सुप्रीम सोल बाप के नजदीक है या नहीं है? है? दोनों ही नजदीक है। क्यों? फर्स्ट नजदीक होना चाहिए, लास्ट क्यों नजदीक होना चाहिए? है? हाँ ये भी ठीक है, लास्ट सो फास्ट हो सकता है। दूसरी बात, माताएं ही असुर संहारिणी गाई हुई हैं। क्या है दुनिया में कलयुग के अंत में सारी दुनिया मनुष्य मात्र
दुखदाई असुर राक्षस बन जाते हैं या देवता बने रहते हैं? है? हाँ? क्या बन जाते हैं? राक्षस बन जाते हैं, दुखदाई बन जाते हैं। ऐसी कोई मनुष्य आत्मा नहीं होती है जो तन से, मन से, तन की इंद्रियों से दूसरों को कभी दुख न देती हो। सारे ही राक्षस संप्रदाय बन जाते हैं। तो ऐसे तो देवियां नंबर वार हैं, लेकिन उनमें एक देवी ऐसी है लास्ट वाली जो महाकाली कही जाती है। उसका काम क्या है? दुनिया के सारे असुरों का खात्मा कर देना। असुरों का खात्मा कर देना, असुर खत्म हो जाते हैं। किस बात में आसुरी लक्षण? वो मूल बात कौन सी है जिसमें आसुरी लक्षण आते हैं? है देह अभिमान। तो सबके देवान को खलास कर देती है। मुंडी अलग और देवान, देवान अलग। बाप भी यही कहते हैं। क्या बच्चे तुम सबको मच्छरों से दस ले जाऊंगा। मच्छरों में मांस होता है, देह का अंश होता है जैसे, नहीं देवान खलास करके ले जाऊंगा, मच्छरों से दस ले जाऊंगा। किसी कराता है ये काम? शक्तियों से, असुर संगारणी शक्तियां गाई हुई हैं। उनमें कौन सी आत्मा रूपी शक्ति है जो सभी मनुष्य आत्माओं के मुकाबले एक बीज बाप को छोड़कर सबसे जास्ती पावरफुल है? है? कौन? जगदम्बा सात्विक स्टेज का नाम है और महाकाली तामसी स्टेज का नाम है। तो जो महाकाली है तो जगत अम्बा। वास्तव में जगत माने 500 करोड़, जगत माने 500 करोड़ की अम्बा, हर धर्म वालों की अम्बा। कहाँ का जन्म है, कहाँ जन्म लेती है? कलकत्ता ने? कलकत्ता में तो बाप आता है। अद्वैतवाणी में बोला है सब धर्म वालों की नजर दिल्ली पर है। बाप की नजर भी दिल्ली पर है। देखने में भी आता है। दुनिया में वो एक शहर कौन सा है जहाँ ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहे पड़े हैं? कौन सी?
दिल्ली।
दिल्ली ही ऐसी जगह है जिसे दिल्ली की गोद में सब धर्म वालों ने राज्य किया है। क्या? दिल्ली की गोद में सब धर्म के बच्चे खेले हैं। और मनमाना राज्य किया है, खून की नदियां भी बहाई हैं। कहाँ? दिल्ली में। इसलिए बोला दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन। तो किसका परिवर्तन बड़ा मुश्किल है? कि एक के परिवर्तन होने से सारी दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा, सारे भारत का सुधार हो जाएगा। एक के बिगड़ने से सारी दुनिया बिगड़ जाती है, सारा भारत बिगड़ जाता है। कौन आत्मा है वो? बापटे। सही बात है। कोई कोई बच्चे माँ को सपोर्ट करते हैं, है जो माँ को सपोर्ट करने वाले होंगे, कभी कभी इतने तीखे सपोर्ट करते हैं माँ को कि बाप की नाक पकड़ करके खींच के रख देते हैं। तो देखो, एक ही आत्मा है। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप को छोड़ करके जो सारी मनुष्य सृष्टि के बीच में सबसे जास्ती पावरफुल है, उसका नाम दिया है दूसरा प्रकृति। क्या नाम दिया? प्रा माने प्रकृष्ट रूपेण, कृति माने रचना, कृति माने कार्य, प्रकृष्ट रचना है। कौन? जगदम्बा। इसलिए गीता में दो प्रकार की प्रकृष्ट रचना बताई है, दो प्रकार की विभूतियां बताई हैं, एक जड़ और एक चैतन्य। जड़ प्रकृति है पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, और उनके चैतन्य रूप हैं पृथ्वी माता माने पृथ्वी देवी, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता। क्या? तत्व रूप में चैतन्य भी है, जैसे पांच तत्व जड़ हैं, वैसे ये चैतन्य आत्माएं भी जड़त्व में ही बुद्धि वाली हैं। कैसी बुद्धि? जड़ तुम्हारी बुद्धि वाली। उन पांचों में सबसे जास्ती जड़ तुम्हारी बुद्धि किसकी है? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश में है पृथ्वी पृथिव्याति मने विशाल रूप धारण करती है, उसकी विशालता का एक अवतार भी दिखाई दिया है भक्ति मार्ग में। कौन सा अवतार है? मत्स्य अवतार। कहते हैं कि ऋषि जी थे या कोई राजा थे, उन्होंने अपनी अंजलि में मछली को ले लिया, घर ले आए, उसको बर्तन में डाल दिया, वो दूसरे दिन फिर बढ़ गई, बड़े घड़े में डाल दिया, फिर बढ़ गई, उसको बड़ा टब बनाया, उसमें डाल दिया, फिर बढ़ गई, तालाब में डाल दिया, फिर बढ़ गई, नदी में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? नदी में डाल दिया। बताओ कौन सी नदी में डाला होगा? है? ब्रह्मपुत्र नदी में डाला होगा। है? वो मछली का बड़ा रूप क्या होता है? मछलियों में एक बड़ा रूप होता है, है? नहीं मालूम? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। मगरमच्छ के ऊपर कौन सवार करती है? है गंगा, है? हाँ जी, तो उसको और कोई सवारी नहीं कर पाता। कौन सवारी कर पाती है? गंगा सवारी करती, अपने कंट्रोल में ले लेती, अपने पेट में डाल लेती है। नहीं तो वो इतनी बड़ी मछली है कि सब मछलियों को खा जाती है। इसलिए न्याय बना हुआ है कि छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। और सागर में अनेक प्रकार की मछलियां होती हैं। सागर जड़ भी, सागर चैतन्य भी, चैतन्य सागर में भी चैतन्य मछलियां, अनेक प्रकार की मछलियां। क्या? अनेक प्रकार की मछलियां, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बड़ी मछली कौन सी हुई? बड़े पे बड़ी मछली है जगदम्बा, मत्स्यावतार। तो सबसे ज्यादा पावरफुल हुई ना है पांच तत्व, तो ज्यादा पावरफुल हैं या एक बीज बाप को छोड़ करके बाकी मनुष्यात्मा ज्यादा पावरफुल है? अरे पांच चैतन्य तत्वों को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं मनुष्य मात्र चैतन्य आत्मा, वो ज्यादा पावरफुल हैं या पांच चैतन्य तत्व ज्यादा पावरफुल हैं? है? जैसे पांच तत्व जब विकराल रूप धारण करेंगे तामसी स्टेज में, जिनमें मुख्य है पृथ्वी, तामसी रूप धारण करेगी, बड़े बड़े भूकंप लाएगी। इतने बड़े भूकंप आएंगे जिनमें एक मंजिल से लेकर के सैकड़ों सैकड़ों मंजिल की जो इमारतें बनाई हुई हैं, और शहरों में जिन बहुमंजिली इमारतों में ढेर के ढेर मनुष्य रहे पड़े हैं कि नहीं, सब धराशायी हो जाएंगे। दुनिया का बड़े से बड़ा मनुष्य सृष्टि का विनाश होता है भूकंप से। भू माने पृथ्वी, कंप माने कंपायमन। कोई में भी कपकपी कप पैदा होती है, है? कब पैदा होती है? है? वाइब्रेशन को तो कहते हैं कपकपी, लेकिन वो कपकपी आती किस लिए है? है? भय पैदा हो जाता है। जब बहुत भयभीत हो जाते हैं तो कपकपी छूट जाती है, और भयभीत कब हो जाते हैं? है जब कोई समस्या का समाधान ही नहीं मिलता, भयंकर समस्या सामने आ जाती है, तो मारे डर के कपकपी छूट जाती है। भगवान को क्या प्रिय है? कौन? ज्ञानी। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यही विद्यते। ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। और ज्ञान माने जानकारी, जानकारी माने सच्चाई। वो किसके पास है? है सुप्रीम सोल बाप के पास सच्चाई है, वो एवर प्योर है। उस बाप के पास जो सच्चाई है तो बाप है ना, है या नहीं? तो किसी को देता होगा ना, है? बड़े बच्चे को देता है। तो जो सुप्रीम सोल बाप एवर प्योर है, वो एवर प्योरिटी की पावर मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप को देता है। देता है आ? अरे जो होगा उसके पास वो ही देगा ना। उस बाप के पास क्या है? है अखूट सच्चाई का भंडार है, अखूट ज्ञान का भंडार है। ऐसा भंडार है जिस भंडार में से सारा ही कोई निकाल ले जाए तो भी सारा ही बचता है। अभी वो बाप ब्रह्मा के तन में बोलते हैं, बच्चे मैंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ मेरे पास जो था वो बच्चों को दे दिया। क्या दे दिया? ज्ञान दे दिया। निराकार बाप है तो निराकार वर्षा देगा या साकारी वर्षा देगा? निराकार ज्ञान का वर्षा देता है। उस वर्षे की जो कदर करेगा वो फायदे में रहेगा या नहीं रहेगा? कदर नहीं करेगा तो फायदे में नहीं रहेगा। धनवान बाप है, करोड़पति है, लखपति है, अरबपति है, शंखपति है, उसका बच्चा सारा धन बर्बाद करने वाला है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं? तो धनपति बाप के धन की उसे कदर है? है? कदर नहीं है तो क्या बन जावेगा? बचमंगा बनेगा या नहीं बनेगा? भिखारी बन जाए। ऐसे ही ये सुप्रीम सोल बाप है जिसके पास अखूट सच्चाई का भंडार है, ज्ञान है। कदर करने वाले नंबरवार हैं। कोई सब कुछ छोड़ छाड़ करके तन भी तेरा, मन के संकल्प भी तेरे, ये चटपुजिया धन भी तेरा, बीवी बाल बच्चे भी तेरे, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। ये पेट के धंधे दोरी भी मेरे या तेरे? है? पेट के धंधे दोरी भी मेरे नहीं, सब कुछ सारा संसार तेरा। मुझे सिर्फ क्या चाहिए?
अब चाहिए।
है? क्या चाहिए?
शिव बाबा दूसरा न
पड़े। शिव बाबा चाहिए, बाप चाहिए। बाप किस लिए चाहिए? है? हाँ, वो बाप कहता है मामेव नमस्कुरु, मुझे याद करो, मन मना बाब। क्या कहता है? मत मेरे मना, मन में बाबा समाजा, मेरे मन में समाजा। कौन सा बाप कहता है? शिव बाप कहता है, उसको मन है, है? है। शिव बाप को तो मन ही नहीं है, वो तो अमन है, सदा मन है। सदा अमन चैन में रहने वाला है, वो बेचैन कभी होता ही नहीं। तो वो बाप जो अमन है वो ये वाक्य नहीं बोल सकता। क्या? मन मना भव। तो कौन बोलता है?
मनुष्यों के बाप।
मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। अब ब्रह्मा तो अनेक है,
परम ब्रह्म एक।
तो जो परम ब्रह्म कहा जाता है, जिसके लिए शास्त्रों में भी लिखा है गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस परम ब्रह्म को पहचानो। जो परम ब्रह्म परम पिता का आधार है। परिवार में पिता का आधार कौन होता है? माता। परम पिता शिव का आधार कौन? परम ब्रह्म। मुकरर रथ वो आत्मा जिसका रथ आदि में भी मुकर्रर था, मध्य में भी मुकर्रर है और अंत में भी मुकर्रर रहेगा। तो परिवार बनाने के लिए पिता किसको आधार बनाता है? माता को। तो नाम दिया परम ब्रह्म, बड़े ते बड़ी माँ। प्रवृत्ति मार्ग का सच्चा बाप होगा तो जीवन में एक माता को आधार बनाएगा और अगर खुदा न खास्ता दूसरी तीसरी माता को भी आधार बनाना पड़े तो पहली माता को महत्व देगा। पहली माता की जो रचना है बच्चे उनको महत्व देगा या दूसरी माताओं के बच्चों को महत्व देगा? तो ये परंपरा भगवान आता है तब से ये परंपरा भारत में चली है। क्या प्रवृत्ति मार्ग की ये पक्की परंपरा है? जो पहली माता है और पहली माता से पैदा हुए जो बच्चे हैं उनको विशेष प्रेफरेंस देता है बाप। दूसरी तीसरी माताओं को और उनके बच्चों को उतना महत्व नहीं देता। तो परमपिता परमात्मा शिव की पहली रचना कौन हुई? परम ब्रह्म। बाप किस पर फिदा होता है? है माता पर फिदा होता है। विदेशी बाप या स्वदेशी? तो जिस माता पर माता के रूप में अव्वल नंबर पार्ट धारी जो आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसको पहले पहले क्या बनाता है? माता बनाता है। क्या परिवार में परिवार भातियों के बीच में बाप पहले पहले किससे मिलन मेला मनाता है? है बच्ची से, माता से,
पत्नी से,
पत्नी से। हाँ तो सुप्रीम सोल बाप मनुष्य सृष्टि के बाप को पहले पहले अपनी माशू का बनाता है। क्या बनाता है? माशू का बनाता है, खुद आशिक बनता है। अब सुप्रीम सोल बाप जिसको माशू का बनाएगा तो सारी दुनिया को उस आत्मा को माशू का बनाना पड़े या नहीं बनाना पड़े? है बनाना पड़े। इसलिए एक शिव बाबा है माशू और बाकी सारी दुनिया है आशिक। और पहला नंबर आशिक कौन है? कौन आत्मा? सुप्रीम सोल शिव। आशिक मासू के पीछे भागता है या मासू का आशिक के पीछे भागती है? तो शिव बाप क्या करता है? आशिक बनकर बोले कितनी ऊंची कुर्सी पे बैठा है, है? जैसे दुनिया में भी कोई महाराजा होते हैं, सम्राट होते हैं, बहुत ऊंची कुर्सी होती है। फिर उनका भी दिल किसकी तरफ दौड़ता है? मासूका के पीछे दौड़ता है ना। तो शिव बाप बोलते हैं तुम्हारा आशिक बना है, और जिस पर आशिक होते हैं उसको सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार रहते हैं या नहीं? तैयार हो जाते हैं। दुनिया में भी ऐसे ही होता है, जो भी परिवार का मुखिया है बाप, वो माता को सब कुछ सौंप देता है। नहीं है, बच्चा तो बाद में पैदा होगा, पहले किसको सौंपता है? माता को सौंपता है। तो शिव बाप ने यज्ञ के आदि से ही उस आत्मा को पहले ही सब कुछ सौंप दिया था। फिर कमी क्या रह गई है? कमी क्या रह गई जो राम फेल हो गया है? जो नॉलेज है, तीनों काल की नॉलेज, वो हथेली पर आम नहीं जमाया जा सकता। उस ज्ञान को धारण करने के लिए, जैसे दुनिया में भी दुनियावी नॉलेज धारण करने के लिए 18-20 साल पढ़ाई पढ़नी पड़ती है कि नहीं? है, पढ़ती है। तो ऐसे ही यज्ञ के आदि में पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए मनुष्य सृष्टि का बीज बाप भी फेल हो गया। परंतु जिस परम ब्रह्म में परमपिता शिव प्रवेश करते हैं, वो ब्रह्मा आयु कितनी? ब्रह्मा की आयु कितनी? 100 साल। कब पूरी होती है? 76 में पूरी होती है। वो 40 वर्ष लगते हैं उस बीज रूप बाप में जो मनुष्य शक्ति का बाप है, उस सच्चाई को ग्रहण करने में, शक्ति को ग्रहण करने में, गॉड इज ट्रुथ को अपना बनाने में कितना टाइम लगता है? 40 वर्ष। इसलिए पिछली अव्यक्त वाणी में जिन्होंने ध्यान से सुनी होगी याद होगा, पांच दिसंबर पहला अव्यक्त मिलन दिवस मनाया, बताया, याद है किसी को? है नहीं सुनी? सुनी तो है। वो पहला अव्यक्त मिलन का दिवस है, वास्तव में स्मृति दिवस है, सच्चा स्मृति दिवस। 18 जनवरी नहीं, 5 दिसंबर। इसका मतलब है कि वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप पूर्व जन्म में फेल होकर दोबारा ब्राह्मण जन्म लेता है, तो पिछले जन्म का ब्राह्मणत्व है साथ लेकर आता है या नहीं आता है? और वो आत्मा पूर्व जन्म में जो पहले यज्ञ के आदि में गीता का क्लेरिफिकेशन मिलता था पीयू के द्वारा, जो सारा क्लेरिफिकेशन बाद में जब पहली ब्राह्मणों की सृष्टि का विनाश हुआ, तो विनाशकारियों ने वो सारा भंडार जमीन दोज कर दिया, वो कौन सी आत्माएं होंगी जिन्होंने वो सच्चाई का सारा भंडार जमीन दोज कर दिया? है मुसलमानों ने हिस्ट्री में देखा जाए, हमारे शास्त्रों को फाड़ करके नदियों में फेंक दिया, फाड़ के जमीन में गाड़ दिया, फाड़ करके भाड़ों में झोंक दिया, जला दिया। वो ही आत्माएं निमित्त बनती हैं। यज्ञ के आदि की शूटिंग में ब्राह्मणों की दुनिया में जिन्होंने वो गीता का सारा क्लेरिफिकेशन जमीन दोज किया था, दूसरी बार ब्राह्मणों की सृष्टि होती है उसमें भी ऐसे ही होता है। ब्रह्मा के द्वारा जो भी वाणियां निकली उन वाणियों को फाड़ करके फेंक दिया गया, चाट मसाला बना के खा लिया। कचरे के डब्बे में फाड़ के फेंक दिया, नहीं तो 51 से लेकर के 68 तक की 18 साल की 18 अध्याय गीता भगवान की वाणी कितना संभाल के रखनी चाहिए। लेकिन है
सिर्फ 5 साल का रह गए।
हाँ जी, वो भी तब जब चारों चित्र तैयार हो चुके थे ब्राह्मणों की दुनिया में। तो अभी भी ऐसे ही हुआ, जैसे अंग्रेजों ने विदेशों में ले जाकर के जर्मनी में ले जाकर के अपने शास्त्रों का सारा अर्थ बदल डाला, मनमाना अर्थ निकाला, शास्त्रों में पढ़ा कि यादवों के पेट से लोहे के मूसल निकले तो उन्होंने मिसाइल से बना डाले। उल्टा क्लेरिफिकेशन करके सब कुछ उल्टा कर दिया। सी उल्टेपन को सीधा करने के लिए भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, निमित्त बनाता है मनुष्य सृष्टि के बाप को, और मनुष्य सृष्टि का बाप बाप की प्रॉपर्टी की पूरी कदर करता है। बाप उस बच्चे को प्रेफरेंस देता है, क्यों? 500 करोड़ आत्माएं नहीं है, वो आत्माएं बाप के बच्चे नहीं है, तो उनको प्रेफरेंस क्यों नहीं देता?
निभाने वाला एक ही है।
है?
निभाने वाला एक ही है।
क्या निभाता है?
बाप का संपत्ति को प्राप्त है, वो सभी अपना के नहीं है, जो ध्यान देता है उसके कदर करता है।
क्या कदर करता है? सतयुग में तो सब भूल जाते हैं।
सतयुग में भूल जाते हैं। हाँ। संगम में,
संगम में
उसको कदर करते हैं, उसको
अनुभव से कदर करता है।
बाकी चार युगों में कदर नहीं करता है तो चलेगा है? एक जन्म में कदर करे, बाकी 84 जन्मों में बेकदरी कर दे?
ऑटोमेटिक
आता है। माना सतयुग त्रेता में वो ज्ञान रहता है। फिर रहता है, सार रूप में रहता है। ज्ञान का सार है मैं शरीर नहीं हूँ, 5 तत्वों का पुतला नहीं हूँ, मैं ज्योति बिंदु स्टार आत्मा हूँ। ये सार रहता है या नहीं रहता है? इसी सार का द्वापर युग से विस्तार शुरू होता है उस आत्मा के द्वारा, जिसका नाम भारत है। क्या नाम है? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। द्वापर के आज से ही पहले पहले कौन से ग्रंथ बनाए गए, शास्त्र बनाए गए है? वेद बनाए गए। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, उनको भी कहते हैं वेद व्यास। क्या कहते हैं? वेद व्यास। और जो वेद बनाए गए उनमें भी पहला शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। किसकी गीता? भगवत, भगवान की बनाई हुई गीता। वो ही भारत वाली आत्मा जो संगम युग में बाप को पहचानने के बाद बाप के ज्ञान में ही जीवन भर रत रहती है, लगी रहती है। जो बाप का धंधा, सो बच्चे का धंधा, दूसरा कोई कोई धंधा नहीं। तो वेद व्यास नाम पड़ता है, भगवत गीता रची, उसमें भी श्लोक में आया है व्यास प्रसादात। ये गीता किसकी प्रसन्नता से मिली? व्यास की प्रसन्नता से मिली। वेदों के बाद उनकी व्याख्याएं निकली, आरण्यक और शतपथ ब्राह्मण आदि, उनकी भी व्याख्याएं निकली। उपनिषद, और उनकी भी बाद में व्याख्याएं निकली, पुराण, महाभारत पुराण, भागवत पुराण, रामायण पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, पुराण ही पुराण। ये व्याख्याकारों में मूल व्याख्याकार कौन? मूल कोई तो होगा। अरे किसी ने तो शुरुआत की होगी। व्याख्या करने की जो शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है, सुना होगा सांख्य योग, नाम सुना है सांख्य योग। सांख्य का मतलब है सह आख्या, व्याख्या। सह माने साथ, व्याख्या के साथ। जैसे मुरली है, इतने साल मुरली पढ़ते रहे, ब्रह्मा कुमारी आज तक भी पढ़ रही है। उस मुरली के तंत को जाना, बाप को पहचाना? नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना?
समझा नहीं।
क्योंकि मुरली सुनी सुनाई तो, लेकिन व्याख्या नहीं मिली। व्याख्या न मिलने के कारण समझ में ही नहीं आई। तो भगवान स्वयं ही व्याख्या करता है। जैसे प्राइमरी स्कूल में बेसिक नॉलेज लेते समय छोटे बच्चे कबीर दास के, सूरदास के, तुलसीदास के कवित्त चौपाइया वगैरह पढ़ते हैं, रटते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन उसके मर्म को, उसके रहस्य को नहीं जानते, क्योंकि व्याख्या को समझ नहीं सकते। बुद्धि विशाल नहीं बनी है, सगीर बुद्धि नहीं बने हैं। बड़े बच्चे हो जाते हैं, सगीर बुद्धि बनती है। तो हायर क्लासेस में जहां एडवांस ज्ञान मिलता है उन्हीं कवित्त के उन्हीं चौपाइयों के व्याख्या मिलती है टीचर के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा, लेक्चरर के द्वारा, तो गहराई को समझते हैं। इसका फाउंडेशन कहां पड़ता है? संगमे को फाउंडेशन पड़ता है। भगवान भी आते हैं तो बच्चों के सामने मां के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। पहले पहले किसके रूप में प्रत्यक्ष होते हैं? मां के रूप में। कौन सी मां है? परम ब्रह्म के द्वारा। हाँ, परम ब्रह्म के द्वारा नहीं, ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा के मुख से जो सुनते हैं, सुनाते हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। वो भी दो प्रकार के हैं, एक कुहवंशावली, मुखवंशावली। ब्रह्मा के मुख से निकले हुए भगवान के महावाक्यों को जिन्होंने प्रेफरेंस दिया, वो असली ब्राह्मण मुखवंशावली। और जिन्होंने मुख से निकली हुई भगवान की वाणी को प्रेफरेंस नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया, छोटे छोटे बच्चे हैं, गोद को महत्व दिया, प्यार कहां मिला छोटे बच्चों को? मां से प्यार मिला। तो गोद को प्रेफरेंस दिया, बड़ा गुमान रहता है, अरे तुम कल के बच्चे हो, तुम क्या जानो, हमने माँ बाबा की गोद ली है। क्या? हमने मम्मा बाबा की गोद ली है, तुम हमको क्या समझाओगे? तो देखो स्वाभिमान रहता है ना, है नहीं रहता? स्वाभिमान रहता है या अपनी अम्मा का अभिमान रहता है? है, है? स्वाभिमान रहता है, स्वामान्य आत्मा का अभिमान रहता है, अम्मा का भी रहता है, आत्मा का भी रहता है। माँ जो होती है रचना है, रचयिता नहीं है। मुरली में भी बाबा कहते हैं ब्रह्मा का बाप कौन, पूछा ना, तो बाबा बोलते हैं, पूछते हैं, तो कोई तो बाप होगा ना, नहीं होगा? कौन है, है? यज्ञ के आदि में दादा लेखराज ब्रह्मा को किससे जन्म मिला कि मैं ब्रह्मा हूं, मुझे सफेद पोष का साक्षात्कार हुआ, मैं ब्रह्मा सो विष्णु बनूंगा, विष्णु का साक्षात्कार हुआ, विनाश का साक्षात्कार हुआ, विनाश होने वाला है इस दुनिया का, नई दुनिया में मुझे कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। इस साक्षात्कार के आधार पर पवित्र आत्मा को साक्षात्कार का लाभ भावना का भाड़ा मिला या नहीं मिला? जिसने प्रैक्टिकल में अनुभव किया साक्षात्कार में, उसको पक्का निश्चय हो गया कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं कृष्ण की आत्मा हूं, औरों को वो निश्चय नहीं बैठा अपनी आत्मा का, तो ब्रह्मा पहली रचना है दादा लेखराज के रूप में, किंतु तन पुरुष का है, दुर्योधन दुशासन का है, क्योंकि वाणी में बोला है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, इसलिए वो शरीर छोड़ने के बाद जिस शरीर में भी वो ब्रह्मा प्रवेश होकर के तामसी पार्ट बजाता है, जिस अधूरे चंद्रमा का चित्र माता के चेहरे पर दिखाया जाता है, जिस माता में प्रवेश करता है, वो माता कौन है? जगदम्बा महाकाली। वो महाकाली जिसमें चंद्रमा की सोल प्रवेश है, वो ही महाकाली जिसके लिए आज तक भी सिखों में गायन है, राज करेगा खालसा। क्या ये तीसरी ब्राह्मणों की रचना है? क्या ब्राह्मणों की तीसरी रचना है, जिस तीसरी रचना में वो महाकाली रूपी माता सारे ही मनुष्य मात्र के हुजूम को अपनी मुट्ठी में लेकर के चलती है। क्या और इसकी शुरुआत कब से होगी है? तुम बच्चों को तमोप्रधान से सत्वप्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। वो कौन से बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 8 की राजधानी कंप्लीट तैयार होती है 100%। अधूरी राजधानी बनेगी या कंप्लीट राजधानी बनेगी? कंप्लीट राजधानी जिसमें कोई नुक्स नहीं, बाकी 8 के अलावा सब किसके कंट्रोल में होंगे है? अरे है महाकाली के कंट्रोल में होंगे। जिसे जगदम्बा कहा जाता है, सारे जगत की अम्बा। फिर जैसे 76 के बाद एक एक करके नए संगठन में आते रहे, नई दुनिया में आत्माएं आती जाती हैं, सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक आती है या नहीं आती है? ऐसे ही उस राजधानी में ऐड होते जाएंगे, 8 की राजधानी में, और 28 तक कंप्लीट राजधानी स्थापन होती है, जहां के लिए कहा तुम बच्चों को तमोप्रधान से सत्वप्रधान बनने में ज्यादा से ज्यादा 50 साल लगते हैं। 50 साल पूरे होंगे और तुम्हारी कंप्लीट राजधानी तैयार हो जाएगी। बस फिर 10 साल रह जाएंगे, जिसमें दूसरे धर्म के धर्म पिताएं भी प्रत्यक्ष होंगे। वो धर्म पिताएं भी जिनमें मान्यता रही है सृष्टि के आदि पुरुष की, सभी धर्मों में आदि पुरुष की मान्यता है या नहीं, वो धर्म पिताएं भी अपने बाप को पहचानेंगे, सलामी भरेंगे, और देह अहंकार जन्म जन्मांतर का ज्यादा होने के कारण उस बाप को मानेंगे मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो मां चंद्रमा की गोद के बच्चे हैं, कुखवंशावली है। कुख गोद को कहा जाता है, गोद माने देह या आत्मा, देह के बच्चे, देहधारी है, देहंकार भयंकर है, वो बाप को भी नहीं मानेंगे, माँ को मानेंगे, जिस माँ के ऊपर जोर जबरदस्ती भी कर सकते हैं, जैसे सारी मनुष्य सृष्टि में 500-700 करोड़ पत्तों में पहला पत्ता कौन सा है, कौन सी आत्मा, जो जब से जन्म लेती है तब से देह अभिमान में रहती है, न मानो तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे राधा कृष्ण को देख लो, कौन सी इंद्रियों का देहवान है, आंख देह का अंग है या नहीं है, तो वो मूल है आत्मा, देह अभिमानियों का बाप कौन, ब्रह्मा, उसके सारे ही बच्चे हैं ये, कौन, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स, ये माँ को मानेंगे बाप को नहीं मानेंगे, माँ की रहबरी में रहेंगे, क्या माँ को सपोर्ट करेंगे, और माँ को अपने बच्चों पर गुमान रहता है, मेरे बच्चे कुछ भी करेंगे मेरी रक्षा करेंगे, बाप की दत टेढ़ी की कर देंगे, तब क्या होता है, माँ को भी देह अहंकार चढ़ेगा बच्चों का या नहीं है, माँ को बच्चों के देह अहंकार का नशा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, तो महाविनाश के अंत तक भी वो बाप से लड़ाई लड़ेगी और बाप का ज्ञान नहीं सुनेंगी, जैसे बाप के जो बच्चे सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, ज्ञान को सपोर्ट करने वाले धर्म पिता हैं, वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो माँ भी सपोर्ट नहीं करेगी, भले सारी दुनिया का विनाश हो जाए, अंत तक लड़ेगी, कारण कि जड़ प्रकृति है, कृति माने रचना कैसी है, जड़ तुम्हें, बुद्धि चैतन्य नहीं है, इसलिए मुरली में बोला है, कोई कोई बच्चे ऐसे जड़ तुम्हारी बुद्धि वाले हैं कि लंबे समय तक बाप के साथ रहने के बावजूद भी बाप को नहीं पहचान पाते, क्योंकि बुद्धि कैसी है, जड़ तुम्हारी बुद्धि है, तो उस माँ की भी बुद्धि ऐसी है, माँ की गोद में खेलने वाले बच्चों की भी बुद्धि ऐसी है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, क्या उनके फॉलोअर्स हो, ब्रह्मा भी कौन सी माता की गोद में पला था, यज्ञ के आदि में कोई माता थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी,
थी या नहीं? उन बच्चों ने बाप को लात मार दी, सपोर्ट नहीं किया। और किसको सपोर्ट किया? उसी माँ को सपोर्ट किया। तो ये प्रकृति दो प्रकार की है, एक जड़ प्रकृति पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, और एक चैतन्य। उन पांचों तत्वों में पृथ्वी का मुख्य पार्ट है। जो पृथ्वी जब कंपायमान हो जाएगी, क्या कब कंपायमान होगी? है नहीं, भूकंप माने पृथ्वी का कंपायमान होना। भू माने पृथ्वी, भू माने पृथ्वी, कंप माने कंपायमान। वो तब कंपायमान होगी जब देखेगी कि मेरे बच्चे, गोद के बच्चे, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट हो, चाहे उनके बड़े से बड़े पावरफुल फॉलोअर्स हो, कोई के हाथ में इस सृष्टि की सत्ता अब नहीं रहने वाली है। अब ये सारी सृष्टि और उस सृष्टि के साथ मैं भी क्या होने वाला है? है? खलास होने वाली है। सारी सृष्टि जलमयी होने वाली है। जल ही जल होगा। क्या? एक है हद का जल और एक है बेहद का जल, ज्ञान जल। बेहद का ज्ञान जल ब्राह्मणों की दुनिया में होगा। 500 करोड़ की दुनिया ब्राह्मण बनेगी या नहीं बनेगी? 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं, 9 ही धर्म पिताएं हैं, 9 ही मुख्य धर्म हैं, उनके फॉलोअर्स भी 9 प्रकार के। तो सारी दुनिया ब्रह्मा के ज्ञान को सुनेगी, मानेगी, जानेगी। लेकिन सपोर्ट किसको करेगी? माँ को सपोर्ट करेगी। इसलिए एक ही रहेगा और सब अनिच्छ बुद्धि। कैसे अनिच्छ बुद्धि होंगे? ज्ञान जल की बाढ़ आएगी भयंकर सारी दुनिया में, सारी दुनिया जलमयी हो जाएगी। तो जब बाढ़ आती है तो देह अभिमान की मिट्टी पानी में मिल जाती है या नहीं? है? ज्ञान जल में जब देह अभिमान की मिट्टी मिल जाएगी ढेर सारी, तो जो काम वासना के कीड़े जैसे हैं, सर्प बिच्छू टिंडन जैसे हैं, वो सांप बाढ़ के जल में नहीं बैठ जाते हैं, सभी अंधे हो जाते हैं। क्या है? अंधे हो जाते हैं सब, अज्ञान अंधकार फैल जाता है। सारी सृष्टि में अज्ञान अंधकार फैल जाएगा। जैसे पहली बार ब्रह्मा ने सृष्टि देखी ब्राह्मणों की, अज्ञान अंधकार फैल गया सारी सृष्टि में एक को छोड़कर। दूसरी बार सृष्टि देखी 47 में, 76 में अज्ञान अंधकार फैल गया, किसी ने नहीं जाना कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, पुरानी दुनिया कैसे खलास हुई और नई दुनिया की कैसे शुरुआत हुई, किसी ब्राह्मण ने जाना नहीं जाना, एक के सिवाय। ऐसे ही 2017-18 का आसपास का टाइम है जहां ज्ञान जल की ऐसी बाढ़ आएगी, ऐसा देह अभिमान की मिट्टी मिल जाएगी उस बाढ़ में कि सारे काम के भोगी जो भोग वासना को त्याग ही नहीं सकते, काम के चेहरे हैं, एक का ही गायन है कामदेव को भस्म किया, उस काम वासना में अंधे हो जाते हैं, जो बाबा कहते हैं आगे चलकर तो ये मनुष्यों की सृष्टि बंदरों के मिसल हो जाएगी, जैसे बंदर बंदरिया वृक्ष की चोटी पर चढ़ करके काम विकार भोगता है, कोई शर्म लिहाज नहीं, ऐसी सृष्टि हो जाएगी। तो सारी दुनिया के वाइब्रेशन कैसे बनेंगे, निर्विकारी बनेंगे या विकारी बनेंगे, देह अभिमान के बनेंगे कि आत्माभिमान के बनेंगे, सारी दुनिया की जलमयी हो जाएगी, सब डूब मरेंगे, एक ही बचेगा जो षष्ठ रूपी वृक्ष के ऊपर दिखाया गया है, कौन है, नंगा क्यों दिखाया है, है देवान का वस्त्र का ध्यान नहीं है, जैसे कि देह अभिमान और देह की इंद्रियां हैं ही नहीं, लिंग रूप हो गया, लिंग में हाथ पांव नाक आंख कान होते ही नहीं, जिस लिंग की सारे दुनिया में मान्यता है, खुदाइयों में हर जगह वो लिंग की मूर्तियां मिली हैं, देश में देश में विदेश में, जिसका सात्विक रूप द्वापर के आदि में, द्वापर भी पहले सत्व प्रधान होता है ना, है द्वापर के आदि में सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया, क्या दिखाया, सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर का लिंग और बीच में हीरा, किसकी यादगार है, शिव बाप की यादगार है, शिव बाप तो कहते हैं मैं न पूजी बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ, शिव बाप जो निराकार है उसकी यादगार है, शिव बाप ही तो मुरली में कहता है ब्रह्मा की मुख से कि मैं न पूजी बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ, तो बताओ वो जो लिंग रखा है सोमनाथ मंदिर में रखा था और जो बिंदु रखा था वो कौन सी आत्मा की यादगार है,
निराकार स्टेज वाले आत्मा की।
हाँ, उस आत्मा की यादगार है जो पूज्य भी बनती है और पुजारी भी बनती है। ओम शांति।